ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। श्री पुतिन ने निर्दोष लोगों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ अभियान में भारत को पूरा समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री पुतिन ने कहा कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उन्हें इस वर्ष के अंत में भारत में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की और भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति में योगदान की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। श्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति के लिए जापान सरकार को धन्यवाद दिया।
I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक में अगले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। निवर्तमान सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल इस महीने की 25 तारीख को समाप्त हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट घोटाले में डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की 2348 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की है। इन परिसंपत्तियों में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गोवा स्थित भूखंड भी शामिल हैं। आरोप है कि ग्रुप के प्रमुख आशीष भल्ला ने 12,000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की और सुरक्षित रिटर्न का वायदा कर उनकी धनराशि विदेशों में अपने परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनियों में अंतरित कर दी। भल्ला को 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा तैयारियों के आकलन के लिए कल मॉक ड्रिल कराने को कहा है। देश के 244 वर्गीकृत जिलों में ग्राम स्तर तक यह अभ्यास कराने का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस बारे में बैठक करेंगे। सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हवाई चेतावनी प्रणालियों, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन या रेडियो संचार व्यवस्था की प्रभावकारिता और नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना है। इस अभ्यास में विद्यार्थियों सहित सभी नागरिकों को हमले की स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रशिक्षण मिलेगा। नौसेना तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ और नौसेना को बधाई दी है। संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग के सोथवी ऑक्शन हाउस से पवित्र पिपरहवा अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। 1898 में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा स्तूप से निकले इन अवशेषों का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। मंत्रालय ने सोथवी को कानूनी नोटिस जारी किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिटेन के संस्कृति मंत्री के साथ ये मुद्दा उठाया है तथा नीलामी तुरंत रोकने और ऐतिहासिक अवशेष लौटाने की व्यवस्था करने को कहा है। श्रीलंका में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 4:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद वोटों की गिनती होगी। 339 स्थानीय निकायों के लिए 72,000 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला तेज बारिश के कारण बाधित रहा। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।